नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। तीन दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में चुनावी रैली की। सर्वोच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की, उनसे तुरंत समर्पण करने को कहा। व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। और मौसम विभाग का जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तीन दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम 20 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीटेक, डीप टेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक जैसे अनेक विशेष पवेलियन शामिल हैं। इस महाकुंभ का उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है और नए स्टार्टअप की सूची में प्रतिदिन बड़ी संख्या में वृद्धि हो रही है। इस स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से अधिक स्टार्टअप, हजारों निवेशक, 30,000 भावी उद्यमी और विश्वस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं।
Government of India is in the process of creating a separate, dedicated deep tech startup policy. The policy paper is now in the final stages of discussion of interministerial discussions, and we hope to bring it forward soon. And after that, we will hopefully move towards creating a dedicated fund of funds again, since government wants to do it in an arm's length manner. We don't want to sort of start picking winners and losers in business, which is why we created this concept of AIFs and fund of funds, so that we have professional managers taking those decisions.
वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पक्ष में उत्साह है। तेलंगाना के जगतियाल में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि जगतियाल की जनसभा में एकत्रित जनसैलाब स्पष्ट संकेत है कि हवा का रुख किस तरफ है। श्री मोदी ने लोगों से राज्य के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एनडीए के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया।
तेलंगाना के मेरे साथियों, बीआरएस और कांग्रेस वो एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। मोदी तेलंगाना के लोगों को गारंटी देता है कि तेलंगाना को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं, ये मोदी की गारंटी है।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति को अपमानित करने वाली उनकी टिप्पणी को लेकर आलोचना की। श्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जहां चंद्रमा की धरती पर उतरा, उस स्थान का नाम शिव शक्ति प्वाइंट दिया गया है।
हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने आईएनडीआई गठबंधन को तेलंगाना के लोगों को अपमानित करने का आरोपी ठहराया। श्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के शिवमोग्गा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवमोग्गा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा का गृह जिला है, जिनके बड़े बेटे बीवाई राघवेंद्र शिवमोग्गा निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद हैं। रैली के दौरान बीएस येदियुरप्पा के अलावा राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता मंच साझा करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिहार में बैठकों का दौर जारी है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
सरकारी भवन है, उस पर पोस्टर्स, वॉल राइटिंग, फ्लैग, फ्लैग बैनर जो भी लगा है इस तरह से, वो सबको हटाना है, जिसमें किसी व्यक्ति किसी पार्टी का। अब उसका हमने कंप्लेंट कर दिया पूरा बिहार राज्य में और कंप्लेंट रिपोर्ट भारतीय निर्वाचन आयोग को भेज दिया। अब अगले 24 घंटा अभी शुरू हो गया है, जिसमें हम लोग सारी पब्लिक बिल्डिंग यानी पोस्ट ऑफिस है, प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है लेकिन उस बाड़ा पर चल रहा है पोस्ट ऑफिस है, वो उसको पब्लिक बिल्डिंग कैटेगरी में रखा जाएगा, तो उस पर भी इस तरह से जो भी पोस्टर्स, बैनर्स आदि प्रचार सामग्री है वो सबको हम लोग आज शाम तक हटा देंगे। उसका भी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। जहां तक इलेक्शन का तैयारियां है, हम लोग सभी डीएम एसपी लोगों के साथ लगातार वीसी कर रहा है, अपडेट कर रहा है। इस बार हम लोगों के लिए अच्छा बात यह है कि 29 साल से कम युवा मतदाताओं की संख्या लगभग 2.25 करोड़, हम लोग अभी जो विशेष प्रशिक्षण चला अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, उसमें हम लोग करीब करीब 28 लाख ऐसे मतदाताओं को जोड़े हैं जिन लोगों की उम्र 30 साल से कम है।
असम में लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। राज्य में 14 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी असम गण परिषद और यूपीपीएल ने सभी 14 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा 11 सीटों पर, असम गण परिषद 2 सीटों पर, जबकि यूपीपीएल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने भी 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है और पार्टी डिब्रूगढ़ में असम जातीय परिषद का समर्थन करेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार सिक्किम चुनाव की अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन दर्ज कराने की अंतिम तिथि 27 मार्च और नामांकन जांच की तिथि 28 मार्च होगी। इसी प्रकार उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च जबकि मतदान 19 अप्रैल को होगा। सिक्किम विधानसभा के मतों की गिनती 2 जून और लोकसभा के मतों की गिनती 4 जून को होगी। 6 जून 2024 के पहले चुनाव संपन्न कराया जाना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनाव पर विशेष कार्यक्रम
जल्द आ रहा है आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
2:00 समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को आज चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी के बीच के संपर्क को दर्शाने वाले यूनिक बॉन्ड नंबरों की भी जानकारी देने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई के अध्यक्ष को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस हलफनामे में यह दर्शाया जाना चाहिए कि एसबीआई ने बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी दे दी है। तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। त्यागपत्र अभी स्वीकृत किया जाना शेष है। इस बीच सूत्रों ने बताया है कि डॉ तमिलिसाई दक्षिणी चेन्नई या तमिलनाडु के किसी अन्य क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज धनशोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य 2 अभियुक्त अंकुश और वैभव जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने अभियुक्तों के वकील की आत्मसमर्पण करने के लिए अतिरिक्त 1 सप्ताह के समय की मांग को खारिज कर दिया। सत्येंद्र जैन को पिछले वर्ष 26 मई को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे समयानुसार बढ़ाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में जारी समन पर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने इन समन को गैर कानूनी कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दूसरी बार धनशोधन रोधी कानून के अंतर्गत समन जारी किया गया है। श्री केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पहले से ही ईडी के समन का सामना कर रहे हैं। वे इस मामले में 8 बार जारी समन पर पेश नहीं हुए हैं। कल रात साबरमती आगरा सुपरफास्ट रेलगाड़ी के इंजन सहित चार डिब्बे अजमेर के पास पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने बताया है कि दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त रेलवे ट्रैक की मरम्मत की जा रही है और इस मार्ग पर चलने वाली छह ट्रेनों को आज के लिए निरस्त कर दिया गया है। बिहार में खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र में NH-31 पर आज सुबह सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मृत्यु हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना एक पेट्रोल पंप के पास एक SUV सीमेंट से भरे ट्रैक्टर से टकराने से हुई। हादसे के बाद SUV खाई में जा गिरी। जान गंवाने वाले सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और जिले में एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। घायलों को भागलपुर और आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पांचवे कार्यकाल के लिए हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 80% प्रांतों के मतों की गिनती में उन्हें 87% मत मिले हैं। इसके साथ वे और 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव दूसरे स्थान और नए उम्मीदवार व्लादिस्लाव दावानकोव तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ श्री पुतिन जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए रूस में सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा देने वाले सबसे मजबूत नेता बन गए हैं। श्री पुतिन ने मॉस्को में अपनी जीत के भाषण में समर्थकों को कहा कि वे यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के साथ जुड़े कार्यों को सुलझाने को प्राथमिकता देंगे और रूसी सेना को मजबूत बनाएंगे। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई भागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने बताया कि आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और झारखंड के कई हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, बादल गरजने, बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलेंगी। अगले 2 दिनों के दौरान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। इस बीच अगले 2 दिनों के दौरान केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई भागों में गर्मी और उमस की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वोत्तर और पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के कई भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। उत्तर प्रदेश का शहर मथुरा रंगों से सराबोर है। कल बरसाना की प्रसिद्ध लड्डू मार होली के साथ 10 दिवसीय ब्रज की होली का जश्न शुरू हो गया है। बरसाना गांव में आज से लठमार होली शुरू होगी, जहां पड़ोसी शहरों विशेष रूप से मथुरा के पुरुष इस अनोखे उत्सव में भाग लेने के लिए बरसाना आएंगे। मेघालय के प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी फल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य का परिवहन, कृषि और किसान कल्याण विभाग साझा रूप से 5 से 13 अप्रैल के बीच स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन करेगा। स्ट्रॉबेरी एक मीठा और रसीला फल है जो अपने विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के बागवानी विभाग ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। राज्य में स्ट्रॉबेरी की फसल रोपण का मौसम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रीनगर में डल झील तट पर आयोजित पहले Formula 4 कार शो से भविष्य में जम्मू कश्मीर की सुंदरता और प्रगति देखने को मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये भारत मोटर स्पोर्ट्स को फलने फूलने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। पहला Formula 4 कार शो कल श्रीनगर के डल झील के तट पर आयोजित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगतियाल में चुनावी रैली की। सर्वोच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की और उनसे तुरंत समर्पण करने को कहा। व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।